ప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైశ్చికీ. అజ్ఞానమిరాందస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురోన్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలె స్వయం రూపః కదామహం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితాశ్చ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధౌ దీనవందౌ జగత్పతే గోపేష్ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. అంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జయతాం సురతోర్పంగు మా మందమదేర్గతిమత్సర్వస్వపదాం భోజో రాధా మదనమోహన. యం బ్రహ్మావరుణేంద్రరుద్రమృతస్తున్వంతి దివ్యైస్తవై వేదై సాంగపదక్రమోపనిషదై గాయంతి యం సామగా జ్ఞానావస్థిత తద్గతేన మనసా పశ్యంత్యం యోగినో యస్యాంతం న విదో సురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః. తో అభి అఘాసుర్ కా భగవాన్ నే వధ కియా. అభి దూసరా లీలా హై బ్రహ్మ విమోహన లీలా. ये ब्रह्म विमोहन लीला ये बहुत सूक्ष्म अनर्थ को निकालता है हमारे हृदय से. जो ब्रह्म विमोहन लीला का विमोहन कैसे हुए और किस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी का विमोहन को दूर किए और किस प्रकार ब्रह्मा जी शुद्ध माधुर्य ज्ञान में स्थित हुए, तो ये लीला श्रवण करने से तो हमारे हृदय में तीन प्रकार के अनर्थ दूर होते हैं. एक है कर्म के प्रति आसक्ति, दूसरा ज्ञान के प्रति आसक्ति, तीसरा ये सोचना कि भगवान का ऐश्वर्य जो है माधुर्य से श्रेष्ठ है. ये तीनों प्रकार के जो अनर्थ हैं वो है कर्म ज्ञान और ऐश्वर्य ज्ञान. ये तीन ऐश्वर्य स्वरूप के प्रति जो आसक्ति है या ऐश्वर्य लीला के प्रति आसक्ति है, तो इससे हम व्यक्ति मुक्त हो सकता है या इस इन प्रकार के अनर्थों को हृदय में नाश कर सकता है. तो अगासुर से सारे बच्चों को सारे ग्वाल बालों को बचाने के बाद भगवान श्री कृष्ण सभी बच्चों को बोलने लगे और वृंदावन का जो जंगल है उस जंगल का सुंदरता का वर्णन करने लगे कि कितने सुंदर पेड़ है, कितने सुंदर वृक्ष है. ऐसे सुंदरता का वर्णन करते हुए कृष्ण अपने सारे ग्वाल बालों के साथ अपने बछड़ों के साथ चलते चलते एक जगह पहुंचे जहां यमुना नदी था. यमुना नदी के किनारे में उनका बहुत सुंदर सा रेती है, बहुत मृदु रेती है और नजदीक में बहुत सुंदर घास भी था. श्री कृष्ण ने कहा ये बहुत सुंदर जगह है, इधर गायें अपने बछड़े पानी भी पी सकती है और नजदीक में घास भी है, घास भी खा सकते हैं और इधर बहुत सॉफ्ट रेती है और इधर सुंदर सा दृश्य है. हम सब लोग इधर बैठ के अपना लंच ग्रहण करेंगे, अपना मध्याह्न भोजन ग्रहण करेंगे क्योंकि बहुत भूख लग रहा है. तो सारे जितने भी ग्वाल बाल थे उन्होंने इस बात को सहमत हुए और बीच में श्री कृष्ण बैठे थे और एक लाइन में जैसे लोटस कमल के जो पंख होते हैं बीच में कृष्ण बैठे थे, जैसे एक एक पंखों का जो सर्कल बनता जाता है उसी प्रकार सारे जितने भी ग्वाल बाल कृष्ण के आजू बाजू बैठे एक कमल के फूल के माफी सब दिखाई पड़ रहा था। और ग्वाल बाल अपने अपने जो टिफिन लाए थे उसको कोई फूलों के पंखुड़ियों के ऊपर, बड़े बड़े फूल थे उसके पंखुड़ियों को रखे वो प्लेट बना के खाते थे, कोई पत्तों के ऊपर रखते थे, कोई तो उधर पत्थर के ऊपर ही रखते खाता था, कोई अलग अलग जो पेड़ के जो लकड़ी होते हैं बार्क्स होते हैं उसके ऊपर रख के खाते थे। खाने के समय वो एक दूसरे को खिलाते थे और सब लोगों का केंद्र कृष्ण के ऊपर था और एक ग्वाल बाल आके कृष्ण को खिलाता था, देखो मेरा जो मैं लेके आया हूं, मैं लंच लेके आया हूं, ये खा के देखो। तो कृष्ण उसको खाते थे और हंसते थे और इस प्रकार पूरा मधुर लीला उत्पन्न हो रहा था। तो ब्रह्मा जी देवताओं का ये अघासुर का वध करने का जय जयकार सुन के वो आए, आके देखे अरे ये जो बालक बीच में बैठ के सबके साथ खा रहा है, मैं सुना केवल हवन जो किया जाता है उसी के द्वारा भगवान स्वीकार करते हैं, तो ये तो ऐसे कैसे खा रहा है, कोई वो झूठा नहीं, ये वही की हाथ से वो खा रहा है, वही झूठा हाथ से कृष्ण को खिला रहा है, ये थोड़ी ना होता है, ये भगवान का प्रतिज्ञा थोड़ी ना होता है, ये तो कुछ गड़बड़ लगता है ना, हम क्या यही भगवान है क्या, क्या है ये समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी को भी मोहित हो गए ये लीला को देख के, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो वेदों में सुना है भगवान केवल यज्ञिक विधि के द्वारा सभी स्वीकार करते हैं, ये झूठा हाथ से वो भी पत्थर के ऊपर पत्ते के ऊपर रखा हुआ चीज पता नहीं वो क्या है, वो कैसे खा रहे करके उनको विमोहित हो गए। तो उस समय भगवान को मालूम पड़ा ब्रह्मा जी देख रहे ये सब विमोहित हो गए, तो उन्होंने बहुत सुंदर सा योजना बनाया, क्या हो गया था, जैसे खा रहे तो जितने ग्वाल बाल थे कृष्ण के सौंदर्य को देखते हुए कृष्ण की लीला में मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने की लीला में मग्न थे, उससे बाद सब लोग हाथ धो के आजू बाजू में देखे, तुरंत देखे कि सारे बछड़े को जहां छोड़े थे घास खाने के लिए वो बछड़े जो है गायब हो गए थे। तो कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, बछड़े गायब इसलिए हुए क्योंकि उनको जंगल का घास अच्छा लग रहा था, ये तो जो नदी का किनारे जो घास रहता है वो इतना उनको अच्छा ही लग रहा होगा, तो चलो जंगल के अंदर गए मैं ढूंढने के लिए जाता हूं। तो इस प्रकार कृष्ण जो है वो बछड़ों को ढूंढने के लिए गया, सारा ग्वाल बाल बोले आप चिंता मत करो मैं आता हूं वापस। उससे ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कुछ करके दिखाऊंगा, उन्होंने क्या किया सारे जितने भी बछड़े थे उनको गायब कर दिए, सारे जितने ग्वाल बाल थे वो गायब कर दिए। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं तो इनको गायब कर दिया हूं लेकिन ये कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। तो क्या हुआ असलियत में भगवान के पार्षद भगवान के ग्वाल बाल की महिमा इतना है कि कोई देवता उनको आके स्पर्श नहीं कर सकता, चुराने की बात क्या कहना, कितना भी महान व्यक्ति कितना भी वो शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो वो भगवान के पार्षदों को स्पर्श भी नहीं कर सकता, उनका नजदीक भी नहीं आ सकता, चुरा के जाने की क्या कहना। जिस प्रकार आप जानते हैं रावण आके सीता को अपहरण करने के लिए आए थे, तो सीता को अपहरण करने के लिए आए थे तो उस समय अस्तित्व में वो सीता को लेके नहीं गए थे, वो माया सीता को लेके गए थे, अग्निदेव प्रकट हुए थे क्योंकि अग्न्यास्त्र के द्वारा लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा को खींचा था। तो उस समय जैसे सीता वो लक्ष्मण के द्वारा जो अग्न्यास्त्र के द्वारा किया गया जो रेखा है उसको पार की उस समय अग्निदेव प्रकट हुए थे, प्रकट होकर असली जो सीता है वो अपने पास रख लिए, जो ना माया सीता है वो माया सीता को उधर रख दिए। तो रावण जो है ये माया सीता को लेके गया था, तो असली सीता को लेके नहीं आया क्योंकि कोई असुर का कोई हिम्मत ही नहीं है क्या, उनका औकात ही नहीं है असली सीता भगवान का जो अंतरंगा शक्ति है उनको स्पर्श कर सके। उसी प्रकार ये ग्वाल बाल भी भगवान के अंतरंग लीलाओं में युक्त है, तो ब्रह्मा जी का क्या औकात है उनको जाके चुराने का। तो इसलिए माया शक्ति के द्वारा बहिंगा शक्ति के द्वारा भगवान ने ऐसे ही ग्वाल बाल और बछड़ों को सृष्टि किया था और उन बछड़ों को ब्रह्मा जी लेके गए थे। और भगवान जो ये जो असली ग्वाल बाल और जितने भी बछड़े थे उनको अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा वो एक साल तक उनको सुषुप्त अवस्था में रख दिया गया था। और भगवान ने क्या किया, मालूम पड़ा कि ब्रह्मा जी वो उठा के लेके गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को विस्तार किए इतने सारे ग्वाल बाल और बच्चों के रूप में। तो इधर श्रीराधा माधव की, इधर हमको मालूम होना चाहिए कि तीन सेट्स ऑफ ग्वाल बाल और बछड़े थे एक ही जैसा। एक बहिरंगा शक्ति के द्वारा सृष्टि किया गया ग्वाल बाल और बछड़े जो ब्रह्मा जी चुरा के लेके गए, दूसरा जो असली जो उनके कृष्ण के जो पार्षद है जो ग्वाल बाल और बछड़े जिनको भगवान ने सुषुप्त अवस्था में एक साल तक रखा था, और भगवान स्वयं ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में विस्तार किए थे। तो देयर थ्री सेट्स, यानी कि खाली दो भगवान ने एक्सपैंड किया था, वो साधारणतः लोगों को मालूम है खाली भगवान ने एक्सपैंड किया था वो, और दूसरा ब्रह्मा जी चुरा के लेके गए। लेकिन साथ साथ में माया के द्वारा जो सृष्टि किया गया जो ग्वाल बाल बछड़े उनको ब्रह्मा जी लेके गए। तो इस प्रकार कृष्ण अपने आप को विस्तार किए ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में, एग्जैक्टली जैसे दिखते थे वैसे ही, और सब लोग वापस गए कृष्ण के साथ। जैसे एक बछड़े अपने माँ के पास गए, गाय के पास दूध पीने के लिए गए, तो वास्तव में उनके अंदर उन गायों में उन बछड़ों के प्रति वात्सल्य प्रेम और बढ़ने लगा, और सारे वृंदावन में जितने भी गोपियां थी उनके जो पुत्रों को या ग्वाल बाल की माताएं थी वो ग्वाल बालों के अभी के ग्वाल बालों को देख के उनके अंदर वात्सल्य प्रेम और उभरते आए। अस्तित्व में पहले ऐसा था कि उधर के गोपियां उनकी बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उन बच्चों से जो प्रेम था उससे अधिक प्रेम कृष्ण के साथ था। लेकिन अभी ऐसा हो गया जो प्रेम कृष्ण के साथ था वही प्रेम उनके बच्चों के प्रति हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि कृष्ण स्वयं उनके गोपियों ग्वाल बालों के बीच में रूप में विस्तार किए, तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा था पूरा माहौल में। तो बलराम जी, क्योंकि उस दिन तो गए नहीं थे, आपको मालूम है बलराम जी जो अगासुर का जब वध हुआ था और ब्रह्म मोहन लीला हुआ था, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुराए थे, उस समय बलराम जी नहीं गए थे। बलराम जी जो अकेले थे घर में थे, क्योंकि वो बलराम जयंती था। तो बलराम जी को अजीब सा लग रहा था, क्या हो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बार बार मन में झूंझ रहा था। तो इस प्रकार एक साल तक भगवान ने सारे जितने भी गोपियों का स्तनपान किया, क्योंकि सबके अंदर वात्सल्य की भावना थी, सब लोग सोचते थे कि मुझे कृष्ण को पुत्र के रूप में चाहिए। तो कृष्ण ने सारे गोपियों का जो इच्छा थी पुत्र के रूप में प्राप्त करने का, वो सारा इच्छा को पूरा किया, उनको गोपियों का स्तनपान किया और जितने भी वात्सल्य रस का पूर्ण तरीके से अनुभूति किया। तो कुछ ही एक साल खत्म होने के 6-7 दिन बाकी थे, तो उस समय तो भगवान की योजना के वजह से उनके अंदर वात्सल्य का उत्कर्ष इतना हो गया कि एक बार जितने गाय थे सब गोवर्धन पर्वत के ऊपर वो गाय चर रहे थे, और उधर के जो क्योंकि गायों को देखभाल करते थे गोपवृंद, यानी उनके जो पिताजी थे ग्वाल बालों के पिताजी वगैरह बड़े लोग देखभाल करते थे। तो गायें जो नीचे गोवर्धन पर्वत के नीचे उनके बछड़े मतलब अभी तो कृष्ण के विस्तार है, वो जब वो घास खा रहे थे या गोचरण कर रहे थे, घास चर रहे थे, उस समय जितने भी गाय गोवर्धन पर्वत के ऊपर से जैसे उन बछड़ों को देखा उनके अंदर इतना वात्सल्य का प्रेम उत्पन्न हुआ, वो एकदम भागने लगे। जैसे देखिए गाय जब पर्वत के नीचे भागना मतलब ये साधारण चीज नहीं होता है, गिर के मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जितने गोप लोग थे वो गायों को इतना भागते हुए तेज भागते हुए देख के वो भी घबरा गए, लेकिन वो देखे कि किसकी ओर भाग रहे, ये बछड़ों की ओर भाग रहे। जैसे गोप लोगों का ध्यान इन अपने बच्चों के प्रति या ग्वाल बालों के प्रति हुआ, वो भी पीछे पीछे भागने लगे। उनको मालूम नहीं पड़ रहा था पत्थर कहाँ है क्या है, कुछ बीच में क्या रुकावट है कुछ समझ में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। ये वात्सल्य प्रेम से उत्प्रेत होकर वो भागते 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 नीचे पर्वत के प्राय उनकी जो स्तन गायों के स्तन से दूध अपने आप निकल के आ रहा था, और अपनी बछड़ों को चाटने लगे, ऐसा चाटने लगे कि वो उनको बस खा जाएंगे, ऐसा चाट रहे थे, ऐसा वर्णन आता है भागवतम में। और ये गोप लोग भी ग्वाल बालों से ऐसा प्रेम कर रहे थे कि आज तक ऐसा प्रेम और वात्सल्य कभी व्रज में दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसा है कि बस एक साल खत्म होने को आ रहा है, अभी फिर वापस उन्हीं के जो बच्चे आने वाले हैं, अभी कृष्ण का जो वात्सल्य प्रेम जितना हो सके अभी पूरा लूट लो उस प्रेम को। तो इस प्रकार की भावना व्रज में चल रहा था। तो उधर ये जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये व्यक्ति का एक स्वाभाविक प्रेम है। और इस जगत में कोई व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है तो सबसे पहला प्रेम अपने आप से करता है। भले व्यक्ति कोई बोले आई लव यू, जो भी बोले, लेकिन आई लव यू बिकॉज यू लव मी, मैं अल्टीमेटली मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। मैं आपसे इसलिए प्रेम कर रहा हूं क्योंकि आपसे मेरे लिए कुछ फायदा है, इसलिए मैं आपको प्रेम नहीं करता। प्रेम इस जगत में अस्तित्व में हम अपने आप से ही करते हैं। नो बडी लव्स एनी बडी इन दिस वर्ल्ड, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, वो व्यक्ति अपने आप से ही प्रेम करता है। तो अपने आप से प्रेम करना मतलब क्या है? अपनी आत्मा से प्रेम करना। अपनी आत्मा क्या है? आत्मा का जो आत्मा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करता है। अस्तित्व में हम अपने आप को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे हृदय में आत्मा परमात्मा है, भगवान स्थित है, केवल इसी कारण अपने आप से प्रेम करते हैं। तो इसलिए जब ये ग्वाल बालों ने और गोप लोगों ने और गायों ने कृष्ण को देखे, कृष्ण जो परमात्मा है, जो अभी ग्वाल बालों के रूप में विस्तार किए हैं, ये गोप लोगों ने उनको देखा, गायों ने बछड़ों को देखा, तो तुरंत वो अस्तित्व में क्या देख रहे थे? वो अपने आप को देख रहे थे, अपने ही आत्मा को देख रहे थे। He was looking, they were actually perceiving, वो किसको देख रहे थे? अपनी आत्मा को देख रहे थे, क्योंकि कृष्ण वास्तविकता में हमारी आत्मा, आत्मा का आत्मा, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर का हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का आत्मा क्या है? परमात्मा है। शरीर का आत्मा है आत्मा, और आत्मा का आत्मा है परमात्मा। तो हम असलियत में किससे प्रेम करते हैं? अपने आप से प्रेम करते हैं। अपने आप मतलब को हम कौन है? आत्मा है। और हमारा आत्मा का आत्मा क्या है? भगवान है। तो वास्तविकता में हम प्रेम भगवान से ही करते हैं, लेकिन हमको ये बात मालूम नहीं है, तो इसलिए सोचते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूं, इससे प्रेम करता हूं, उससे प्रेम करता हूं। अंततः व्यक्ति भगवान से ही प्रेम करता है और किसी से प्रेम ही नहीं करता है। तो इधर इस बात को दर्शाया गया है कि ये जितने भी गोप लोग थे और गायें थी, वो जैसे कृष्ण जो को देखे, यानी अपने ग्वाल बालों को, अब बछड़ों को देखे, तो अपने आप को उनमें देखने लगे। जैसे अपने आप को उनमें देखने लगे और जोरों से भाग के सारा प्रेम उनको वात्सल्य प्रकाशित हो रहा था। तो ये सब एक साल हो गया, तो ब्रह्मा जी जो है वापस आए। अस्तित्व में ब्रह्मा जी कारी एक क्षण के लिए लेके गए थे छुपाने के लिए, जो माया से सृष्टि किया जाए, जो जितने ग्वाल बाल बच रहे थे, केवल एक क्षण के लिए लेके गए थे। इन ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान था कि एक क्षण मेरे लोक में जो है वो इधर एक साल के बराबर है। तो जब वो आए तो एक साल के बाद ही आए इस पृथ्वी के गणना के अनुसार। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए, चकित हो गए, अरे मैं तो उनको छुपा के रखा हूं उधर ग्वाल बालों को उधर, लेकिन इधर तो वैसा का वैसा चल रहा है वर्ज, जैसा होना चाहे था, ग्वाल बाल अपने कार्य कर रहे, अपने बचले कार्य कर रहे, ऐसा का वैसा ही एक साल होने के बाद एकदम चकित हो गया। तो ब्रह्मा जी जैसे भी मोहित हो गए, कृष्ण को मालूम पड़ा कि ब्रह्मा जी जो है अपने वाहन, ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? स्वैन। तो ये स्वैन, स्वैन को हंस बोलते हैं क्या, हंस के ऊपर बैठ के आए। तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, तो कृष्ण को मालूम पड़ा। तो कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी को उन्होंने दिखाया अस्तित्व में क्या है। तो ब्रह्मा जी ने ये जितने भी ग्वाल बाल थे उनका चतुर्भुज रूप देखा। तो ब्रह्मा जी जैसे उन्होंने देखा ये ग्वाल बालों को चतुर्भुज रूप में, समझ गए तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। ये कृष्ण जो है अपने आप को इस प्रकार विस्तार किया करके मालूम पड़ गया। तब ब्रह्मा जी जाके देखे कि मेरे में चुरा गए जूते में बाल बाल कहां गए, वो जाके देखे तो वो तो गायब हो गए। तो ब्रह्मा जी एकदम पूर्ण तरीके से मोहित हो गए। तो ये जो चतुर्भुज रूप जो हर बछड़े से हर ग्वाल बाल से दिखाई पड़ रहे थे, भगवान ने वो जो रूप है वो निकाल दिया और ब्रह्मा जी के सामने फिर वापस जितने भी ग्वाल बाल जो असली ग्वाल बाल बच रहे थे वो भगवान ने प्रकाशित कर दिया। तो ये ब्रह्मा जी देखे तुरंत इतना विस्मय उनके अंदर दूर चला गया और भगवान को प्रणाम किए। भगवान को जैसे प्रणाम किए, उनके पास चार सर है, चार सर वाले ब्रह्मा है, और उनकी आंखों से आंसू आ रहा था, ये आंसू भगवान के चरण कमलों को धो रहा था। तो ये भगवान के चरण कमलों को आंसू जिस प्रकार धोए जाता है, अस्तित्व में कोई व्यक्ति किसी को पानी के द्वारा धोता है तो क्या होता है, उनका चरण या कोई चीज वो साफ होता है। लेकिन ऐसा बोला गया है भागवत में, भगवान के चरण कमलों को अपनी आंसुओं के द्वारा धोने की वजह से ब्रह्मा जी के आंसू शुद्ध हो गए। और बार 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 प्रणाम कर रहे थे। उनके चार सार चार सर है, तो एक बार प्रणाम करने से तो नहीं होगा, एक बार प्रणाम करना हो फिर उठना होगा, दूसरा सर से प्रणाम करना होगा। तो ऐसे प्रणाम कर रहे थे ब्रह्मा जी और विमोहित हो गए। और उधर कृष्ण कुछ भी नहीं बोले ब्रह्मा जी को, ऐसे उनको पता ही नहीं लग रहा था ब्रह्मा क्या कर रहे क्या कर रहे, उनको जरा देखे भी नहीं उनकी ओर, क्योंकि कृष्ण को बहुत गुस्सा आ रहा था। ब्रह्मा जी के अंदर क्या भावना था, मैं इन ग्वाल बालों को भगवान से अलग करूं। ये कृष्ण कभी ये नहीं चाहते थे कि वो अपने भक्तों से दूर रहे, तो इसलिए ब्रह्मा जी को अस्तित्व में उन्होंने कृपा बरसाई नहीं। इसलिए बार बार ब्रह्मा जी उनको प्रणाम करते प्रार्थना करने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला ब्रह्मा जी को। जस्ट उन्होंने ऐसा इच्छा प्रकाशित किया कि हे भगवान, मेरा जो ये जो पदवी है ब्रह्मा नामक जो पदवी है, इसके द्वारा मुझे अहंकार आ गया, विमोहित आ गया, विस्मय हो गया, तो इसलिए आप मुझे ऐसे, ये तो चैतन्य भागवत नवोदिताम महित्मा महिमा में आता है कि ब्रह्मा जी प्रार्थना करते मुझे ऐसा जन्म दीजिए अगली बार, ताकि मैं ऐसे निम्न परिवार में जन्म लूं, नीच परिवार में जन्म लूं, ताकि मुझे इस प्रकार का मोह कभी ना आए कि ये आप साधारण सा व्यक्ति हो, आपके पास ऐश्वर्य नहीं, तो मैं सोचने लगा कि आप भगवान नहीं हो, इस प्रकार का संशय मुझे कभी ना आए। तो इस प्रकार भगवान ने ये कृष्ण से प्रार्थना किया, तो कृष्ण ने अगला जन्म ब्रह्मा जी को हरिदास ठाकुर में रूप में प्रदान किया। उधर भागवत में वर्णन है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अस्तित्व में, देवता लोग जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो अपना जो इस जमीन को स्पर्श नहीं करते, लेकिन स्पष्ट तरीके से लिखा गया कि ब्रह्मा जी जब अपने वाहन से नीचे उतरे तो इस जमीन के ऊपर स्पर्श कर रहे थे, यानी अपना जो ब्रह्मत्व को त्याग कर दिया ब्रह्मा जी ने, देवता का जो देवतापन की जो अहंकार उपाधि होता है वो त्याग करके भगवान का शरणागत हुए। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला है। ब्रह्म विमोहन लीला में हमको मालूम पड़ता है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान दिया, जैसे भागवत में वर्णन है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्मा जी का नाम है आदि कवि। आदि कवि मतलब जो सबसे पहला कवि या सबसे पहला वेदों का ज्ञाता, सबसे पहला पंडित। तो भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होके सृष्टि के प्रारंभ में उन्हें अपनी बांसुरी बजाते हुए सारे जो वैदिक ज्ञान है उनके हृदय में प्रकाशित किया। तेने तेने मतलब जिन्होंने ब्रह्म, ये ब्रह्म मतलब वैदिक ज्ञान, हृदय आदि कवे, आदि कवे मतलब ब्रह्म। तो जो ब्रह्म शब्द ब्रह्म वैदिक ज्ञान को आदि कवये ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, तो ये ब्रह्म क्या हुआ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती सुरयः। ये जो भागवत में लिखा गया मुह्यंती सुरयः, सुरयः मतलब देवता लोग, देवतालों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा। अभी ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा वर्णन है भागवत में, तेने ब्रह्म आदि कवे, लेकिन तुरंत शब्द आता है मुह्यंती सुरयः। वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को देने के बाद भी, सारे वेदों का ज्ञाता होने पर भी मुह्यंती, ये क्यों, मोहित हो गए। इसका मतलब है कि वैदिक ज्ञान के परे और एक शुद्ध ज्ञान है जिनको भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया नहीं था सृष्टि के प्रारंभ में, और वो क्या ज्ञान था, वो है माधुरी ज्ञान, जो वेदों में भी गुह्य है, वेदों के भी प्राप्य नहीं है, वैसा जो ज्ञान है ब्रह्मा जी को शिक्षा देने के लिए कि भगवान ने ये लीला को रचना किया। ब्रह्मा जी को क्या मालूम था, भगवान जो है ऐश्वर्य में युक्त है, भगवान जो है सारे सृष्टि करता है, पालन करते हैं, वो सब कुछ उनको मालूम था, ऐसा नहीं जिनको ना ही मालूम था। लेकिन ब्रह्मा जी भक्तों के द्वारा बंधे जाते हैं, भक्तों से प्रेम के द्वारा बंधे जाते हैं, और भक्तों की बोलने पर नाचते हैं। जैसे गोपियां आके बोलती है देखो कृष्ण नाचो तुमको ये मिठाई दूंगी, तो कृष्ण नाचने लग जाते हैं, भक्तों के आदेश को पालन करते हैं। ये जो माधुर्य ज्ञान है ब्रह्मा जी को ये अभाव था, तो ये अभाव, ये ज्ञान को ब्रह्मा जी को देने के लिए भगवान ने इस प्रकार का विस्मय लीला रचाया, जिसमें तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय आदि कवये, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान, सारा वैदिक ज्ञान प्रकाशित करने के बाद भी वो विमोहित इसलिए कराए सारे जगत को दिखाने के लिए। तो ये जो ज्ञान है भगवान का माधुरी है, ये वेदों से परे है, ये वेदों के द्वारा प्राप्य नहीं है, वेदों का नियम कानून पालन करने के द्वारा प्राप्य नहीं है। आप कर्म ज्ञान कर्म कांड का विधि विधान को कड़ाई से पालन करो, फिर भी भगवान का माधुर्य प्राप्त नहीं होगा। खाली कर्म ज्ञान कर्मकांड ही नहीं, इवन उपनिषदों का ज्ञान को पूरा ऊपर नीचे नीचे से ऊपर तक का प्रट लो, उसके ऊपर हजारों लाखों श्लोकों के ऊपर व्याख्या भी करो, लेकिन माधुर्य प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वैदिक ज्ञान से परे है माधुर्य ज्ञान। जैसे कहा जाता है कि ये जो ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण, ये भी कर्मकांड बाद में भी वो लीला आता है जिसमें भगवान ने उनका अहंकार भी तोड़ते हैं, तो उनके उधर भी हुआ कि भगवान को पहचान नहीं पाए, कृष्ण को पहचान नहीं पाए। और द्विज पत्नियां, उनकी जो पत्नियां हैं, जैसे उनको मालूम पड़ा कृष्ण है, उन्होंने सारा चीजें भगवान को समर्पण कर दिए। ये करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने द्विज पत्नियों का गुणगान किया, आप बहुत अच्छे अच्छे भक्त हो, लेकिन आप फिर से वापस जाओ, अपनी पति के पतियों का सेवा करो, करके उन्होंने वापस भेज दिया। तो उधर आता है कि भगवान उन्हीं बातों को गोपियों को भी कहा था। जब आधी रात में गोपियां आई थी कि कृष्ण की भासुरी का श्रवण करते हुए, तो गोपियों को कहा था कि आप वापस जाओ, लेकिन भगवान जो है केवल हंसी मजाक के रूप में कर रहे थे। भगवान चाहते नहीं थे कि ये जो गोपियां हैं वापस जाए, और गोपियां भी चाहते हैं कि वापस जाने का। भगवान की इतनी बातें सुनने के बाद भी गोपियों को गोपियां वापस देगी, वो रासलीला में भाग ली, भगवान ने उनको स्वीकार किया। लेकिन द्विज पत्नियों को भगवान ने क्या किया, बोला वापस जाओ, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनके पास साथ में लेके जाने के लिए स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी भी उनका ये है, क्या है, हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का जो अयोग्यता है, तो भगवान ने सारा जगत को दिखाया और दिखाया कि गोपियों के गर्भ से जन्म लेने का योग्यता है, वो मैं स्वीकार करता हूं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का योग्यता जो जन्म लेना जो है, मेरी प्रेम भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए वो अयोग्य बन जाता है, जो ब्राह्मणत्व के द्वारा यानी वैदिक अध्ययन के द्वारा मेरा प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। वेदेश दुर्लभम, वेदों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। ये वेदों का ज्ञाता है ब्रह्मा जी, लेकिन फिर भी उनको माधुर्य ज्ञान का वो अभाव था। तो ये जो चीज है कि भागवत में वर्णन किया गया है, जब श्री कृष्ण मथुरा को हस्तिनापुर, अभी युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया, कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद अभी सिंहासन के ऊपर पांडवों को बिठाने के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ के हस्तिनापुर से द्वारका वापस जा रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे, ऐसा वर्णन आता है, सबसे पहला ब्राह्मण लोग आके उनको स्तुति किया। अभी कृष्ण जो है ब्राह्मणों को देखा, स्तुति सुना, जब बाहर आए, और बाद में बहुत सारे सुंदर वाद्य कीर्तन वगैरह सब हो रहे थे, नृत्य हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब रास्ते में आ रहे थे और आगे तो क्या हुआ कि उस समय ऐसा था कि स्त्रियां रास्ते के ऊपर नहीं आती थी, रोड के ऊपर, जैसे पुरुष लोग चलते थे उनको रास्ते सामने से नहीं आती थी। वो तुरंत जितने भी हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, खास करके दासियां हैं, वो सब चले गए उधर इसके ऊपर, छत के ऊपर चले गए, और छत के ऊपर से, घरों के छत के ऊपर से बीच में से रास्ता चल रहा है, और छत के ऊपर से कृष्ण का सुंदरता का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण का सुंदरता दर्शन करते हुए ये स्त्रियां अपने आप में से कुछ संभाषण करने लगी, अपने आप में से कुछ बोलने लगी। तो उधर वर्णन आता है, अन्योन्यमासी संजल्प कैरवेंद्र पुरस्त्री नाम सर्वश्रुति मनोरह। व्यासदेव दिखते हैं कि ये जो इन लोगों के बीच में जो संभाषण है, स्त्रियां, उनको कौन सा बड़ा संस्कृत मालूम है, अगर संस्कृत में बोलेंगे तो उधर कुछ इतना ग्रामरिकली पोएटिकली स्ट्रांग नहीं बोलेंगे, उतना साहित्यिक स्पष्टता नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में जो संभाषण है, क्योंकि वो कृष्ण के संबंधित है, भले ही वो बहुत सारे टूटी फूटी शब्दों के द्वारा क्यों ना हो, वो कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकृष्ट होकर प्रेमवश वो सब लोग बोलने लगे या कृष्ण के बारे में बातचीत करने लगे। संजल्पा मतलब क्या है, जल्पा मतलब क्या है, आलतू फालतू बातें, जल्पा यानी जो ये आलतू फालतू बातें, संजल्पा मतलब वो ये समझ लीजिए तोतली भाषा ही समझ लीजिएगा, बच्चों की जो है संजल्प बोलते हैं, उनका तोतली भाषा है, उस भाषा में और अपने ही तरीके से जो मन में जो भी आया कृष्ण के बारे में सब बोलने लगे। ये व्यास जी कहते हैं ये जो बातें जो जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियों के द्वारा जो कहा गया बातें हैं, ये जो बातें क्या है, सर्वश्रुति मनोहरहा, ये सारे श्रुतियों के परे है, यानी सारे श्रुति जो वैदिक साहित्य वैदिक मंत्रों को भी हरने वाली है, यानी वैदिक मंत्रों के परे है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की माधुरी का ये प्रभा है ईश्वरी के ऊपर। तो ये जो ये विशुद्ध वात्सल्य विशुद्ध प्रेम भक्ति जो है, इतना हमको रामानंद राय के संवाद में अलग अलग जगह, श्री चैतन्य महाप्रभु के संवाद अलग अलग जगह पता लगता है। इवन तथाकथित हमारा जो ये साधना है, मैकेनिकल साधना है, उसके द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक भगवान की माधुरी का आस्वादन करने का जब तक लोभ नहीं होता है, ये लोभ के द्वारा ही ये माधुरी ज्ञान प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी का ये कर्मकांड के प्रति और स्पेक्युलेटिव ज्ञान ज्ञान के प्रति और ऐश्वर्य ज्ञान के प्रति, ये तीन प्रकार के चीजों के प्रति जो आसक्ति है, तभी नाश होगा जब हम भगवान का सहारा लेते हुए लोभ के साथ भगवान की गुणों का, उनकी माधुर्य लीलाओं का हम श्रवण करेंगे। जिस प्रकार की ये जो कृष्ण का कृष्णा बुक में लीलाएं चल रहा है, वो लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो इस प्रसंग में श्री चैतन्य चरितामृत में दो घटनाएं आती है, जहां भगवान सारा जगत को स्पष्ट रूप में दिखाते हैं किस प्रकार माधुर्य ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है। तो सबसे पहला लीला है, वो है हीरा पंचमी लीला। जगन्नाथ जी रथ यात्रा होता है, आप सबको मालूम है रथ यात्रा क्यों होता है। भगवान जगन्नाथ जी अभी एक साल तक ऑलमोस्ट कहाँ है, वैकुंठ में, वैकुंठ में यानी जो नीलाचल है उधर है। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है, मेन जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उधर से कहां तक जाता है, गुंडीचा मंदिर जाता है। और गुंडीचा मंदिर क्या है, उसको वृंदावन के रूप में माना गया है, सुंदराचल वृंदावन। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का पहले या रथ यात्रा के 15 दिन पहले वो दर्शन नहीं देते किसी को। क्यों दर्शन नहीं देते, वो समय लक्ष्मी जी के साथ रमण करते हैं, क्योंकि साल भर अपने जो आस्थान में वो, क्योंकि कृष्ण जो है, जो जगन्नाथ जी है वो द्वारका के कृष्ण होने के नाते वो राजा है, राजा को सारा दरबार में हर चीज देखभाल करना पड़ता है, वो क्या है सब कुछ देखभाल करना है, इसलिए लक्ष्मी जी को समय नहीं दे पाते। तो तुरंत उनको मालूम पड़ता है, कृष्ण को क्या मालूम पड़ता है, अरे भैया अभी बहुत हो गया, मुझे अभी जाना है वृंदावन, अगर मैं ऐसे वृंदावन जाऊंगा तो वैसे लक्ष्मी जी नाराज है मेरे से, तो पूरा साल भर उनको समय नहीं देता हूं, अभी मुझे थोड़ा उनको खुश करना पड़ेगा, थोड़ा उनको खुश करके थोड़ा सा संतुष्ट करके मैं निकल जाऊंगा वृंदावन। तो इसलिए 15 दिन छुट्टी लेते हैं अपने कारोबार से, किसके लिए, लक्ष्मी जी के लिए नहीं, वो जाना था वृंदावन उनको लेकिन लक्ष्मी को थोड़ा सा प्रसन्न करके जाना है, थोड़ा सा टाइम देके, तो 15 दिन के लिए वो छुट्टी लेते हैं, उसको बोलते हैं अनवसरा। वैसे लोगों को बोलते हैं मैं बीमार हूं, लेकिन अस्तित्व में समय क्या है, उनका समय लक्ष्मी जी के साथ बिताते हैं, जब लक्ष्मी जी के साथ समय बिताते हैं लेकिन उनका स्मरण क्या हो रहा है, ठीक है उनको कैसे भी करके शांत कर दूं, थोड़ा सा समय 15 दिन बाद में उधर चले जाऊंगा। तो 15 दिन हो गया, उसके बाद रथ यात्रा प्रारंभ होता है, रथ में लक्ष्मी जी को बोलते हैं बस मैं बस आ जाऊंगा, जाके इधर ही जा रहा हूं, आके आ जाऊंगा। तो लक्ष्मी जी को इंतजार कर रही है, रथ यात्रा हो गया, उधर से चले गए वृंदावन, उधर सारे जितने भी उनके वृंदावन वासी है, गोपियां माधुरी भक्त है, उनके साथ उनका लीलाएं चल रहा है। तब लक्ष्मी जी, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, लक्ष्मी जी को गुस्सा आता है, और सारे जितने भी जगन्नाथ जी के जो लक्ष्मी जी के भी अपना, क्योंकि राजा जो रानी होते हैं, राजा का अलग सेवक होते हैं, रानी का अलग सेवक होता है, ये ट्रेडिशन है, राजा का अलग महल होता है, रानी का अलग महल होता है, राजा का अलग सेना होता है, रानी का भी अलग सेना होता है। तो लक्ष्मी जी ने अपनी सेना को बुलाया, सेना को बुला के जाके भेजा, जाओ तुम्हारे जो राजा है, राजा के सैनिकों को पूछो तुम्हारा जगन्नाथ जी कहाँ गए, और पूछ के उनको बंदी बना दो। तो ये जितने भी लक्ष्मी जी की सेना है वो सब जाते हैं और बड़ा हथियार लेके सब जगन्नाथ जी की सेनाओं को बंदी करके पूछते हैं कहाँ गया तुम्हारा राजा, कब आ रहा है। तो वो तो बोल नहीं पाते, तो सब क्या कहे, लक्ष्मी जी जो है अपनी सेना के साथ जाती है, कहाँ जाती है, वृंदावन, उधर धुमाधाम युद्ध करती है, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी जो है उनको कैसे भी करके जगन्नाथ जी समझा बुझा के वापस भेज देते हैं। तो लक्ष्मी जी कितना भी प्रयास करे वो जो माधुरी की जो है वो बातों को समझ नहीं पाती। हमको वृंदावन में हम जानते हैं अभी भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है बेलवन में उधर, हाँ इतने सालों से तपस्या कर रही है। क्यों तपस्या कर रही है? रासलीला में प्रवेश होने के लिए तपस्या कर रही है। लेकिन ये तपस्या के द्वारा रासलीला में प्रवेश नहीं होता, कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आपको ये फार्मूला बता के गए, ये ऐसी एक छोटी सी फार्मूला बता के गए किसके कैसे हम माधुरी को प्राप्त कर सकते हैं, माधुरी लीला में कैसे प्रविष्ट हो सकते हैं। रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता, यानी जब तक हम गोपियों की पच्चीनों में नहीं चलेंगे तब तक हमको वृंदावन धाम प्राप्त नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी जी क्योंकि ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी जी है, वो तो सिंहासन की ओर बैठी रहती है, इधर तो गोपियां तो उधर फूल लेके आते हैं, कभी दूध पिलाते हैं, कभी ये करते हैं, ये तो छोटे छोटे कार्य करते हैं, तो गांव की महिलाएं हैं उनको बोलना नहीं आता बराबर, इतना उनको उतना उनका श्रृंगार भी इस प्रकार नहीं होता है कि एक राजा रानी जैसा, तो इतना लक्ष्मी जी का इतना वैभव होने की वजह से वो सोचते है कि मैं एक गांव वालों के साथ गांव वालियों के साथ पीछे पीछे कैसे भागूं, मैं तो एक क्षत्रिय हूं, मैं तो रानी हूं, हाँ रानी को ये तो दासियों के बराबर लोगों के पश्चिम में क्या चलना, तो उनके अंदर आता है नहीं मैं तपस्या करते हुए मैं भगवान को प्राप्त करूंगी। इसलिए लक्ष्मी जी को उनके रास्ते में प्रवेश नहीं दिया गया था। तो इससे ये एक लीला है जहां चैतन्य चरितमानस में वर्णन किया गया है कि भगवान का माधुर्य जो है ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है। और एक लीला है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के साथ संवाद में, श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो उधर चार महीना चतुर्मास श्रीरंगम में बिताए थे। उस समय श्रीरंगम का जो हेड प्रीस्ट है वो कौन है, वो वेंकट भट्ट थे। और एक दिन वेंकट भट्ट के साथ संवाद करते हुए तो वेंकट भट्ट को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही मजाक में बोलते हैं कि देखो आप तो लक्ष्मी नारायण के उपासक हो और लक्ष्मी जी जो है वो नारायण की इतनी सेवा करती है, उनकी छाती के ऊपर ही रहती है और वो बहुत सुशील सभ्य और पतिव्रता स्त्री है, लेकिन ये होने पर भी इतना होने पर भी ये लक्ष्मी जी जो है आपकी नारायण को त्याग करके कृष्ण के पास आती है, उनकी रास्ते में भाग लेने का उनका इच्छा होता है, ये मालूम है क्यों मालूम है? तो वेंकट भट्ट को थोड़ा सा गुस्सा आता है, गुस्सा में दुख होता है, हे महाप्रभु आप तो मालूम है, आपको तो सब मालूम है, फिर भी ऐसा मजाक क्यों करते हमारे ऊपर ना? तो लक्ष्मी कृष्ण और नारायण में कोई अंतर ही नहीं है, तो इसलिए लक्ष्मी जी वो तो अपनी पतिव्रता धर्म को तो त्याग नहीं कर रही है, खाली बस नारायण कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। नहीं 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 ऐसा नहीं है, आपकी जो लक्ष्मी है नारायण को त्याग करके हमारे कृष्ण के पास आती है, तो अपनी पतिव्रता धर्म को ही त्याग करके हमारे पास आती है, क्यों मालूम है? कृष्ण जो है कृष्ण के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है, स्पेशलिटी है, तो इसलिए आती है, तो वो नारायण के पास नहीं है। लेकिन फिर भी वो वेंकट भट्ट को अच्छा ही लगता है बात, नहीं नहीं मैं जानता हूं ये सब आप जो कह रहे हैं ये सही बात है, भागवत में भी लिखा है और अन्य शास्त्रों में लिखा है, हम भी जानते हैं, लेकिन ये बात सही है कि कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है। नहीं कृष्ण बोलते नहीं 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 हमारा कृष्ण जो है हमारा कृष्ण स्पेशल है तुम्हारे नारायण से। तब उधर चैतन्य महाप्रभु वर्णन किया था क्या है खासियत कृष्ण में, कृष्ण में खासियत ये है चार प्रकार की जो विशेषता है जो नारायण में नहीं है वो कृष्ण के अंदर है, वो क्या है? वो है वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और परिकर माधुरी। ये चार माधुरियां चार गुण जो 64 कलाओं में, ये 60 कलाएं नारायण के पास है, जो चार कलाएं कृष्ण के पास एक्स्ट्रा वो नारायण के पास नहीं है। ऐसा बोला जाता है शिव जी के पास 55 कलाएं हैं और ब्रह्मा जी के पास 50 कलाएं हैं पूर्ण रूप में, और जीव के पास 50 रहता है लेकिन पूर्ण रूप में नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के पास ही 64 पूर्ण कला होता है। वो चार कलाएं जो नारायण में नहीं है जो कृष्ण में है वो कौन से हैं? एक है लीला माधुरी। लीला माधुरी मतलब कृष्ण इतने इतने सुंदर से लीलाएं करते हैं, वैसा वो ग्वाल बालों से कभी कभी खाना चुरा के खाना, उनकी हाथों से झूठे हाथों से खाना, कभी गोपियां उनको बोलती है नाचो तो नाचना, ये नारायण नहीं करते। नारायण तो है ऐश्वर्य रूप में बैठे तो नारायण ये सब नहीं कर पाते, इसलिए लीला माधुरी नहीं उनके पास। और नारायण को कभी हम देखते नहीं वो बांसुरी बजा रहे, ये बांसुरी उनके पास नहीं होता है। इसलिए ये जो वेणु माधुरी है और परिकर माधुरी, उनके इतने सुंदर सुंदर जो परिकर है जो ये स्वाभाविक तरीके से इनका जो कृष्ण के साथ एक कृष्ण को पुत्र के रूप में मित्र के रूप में और अलग अलग प्रकार जो ये मधुर संबंध ये माधुरी जो भक्त है वो नारायण के पास नहीं होते परिकर माधुरी और है रूप माधुरी। ये रूप माधुरी भगवान का रूप माधुरी इतना सुंदर है कि भगवान स्वयं नारायण के रूप में क्या कहना जब वो द्वारका में थे कृष्ण तो एक बार अपने आप को क्योंकि उधर द्वारका के महल इतना अद्भुत महल है उनके जो पिलर्स वगैरह इतना अद्भुत है कि इतना चमकते थे कि अपने आप का चेहरा भी देख सकते थे। कृष्ण एक बार अपने आप का चेहरे को देखे एक पिलर में एक कम्ब में जैसे देख के सोचने अरे कौन है भाई इतना सुंदर व्यक्ति। तो कृष्ण अपनी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होते। अभी एक बार मथुरा में ऐसा हुआ कि कृष्ण ने अपना जो वृंदावन रूप स्वरूप वाले जो चित्र है उसको देख लिया देख के चकित हो गए अरे कौन है इतना सुंदर उनके प्रति आकृष्ट हो गए। तो हमको ये भी लीला मालूम है किस प्रकार एक बार अर्जुन ने एक सूरा युद्ध सब खत्म हो गया सब राजा बन गए उग्रसेन। उसके बाद उनके राज में एक ब्राह्मण था उनके जितने बच्चे थे वो जैसे पैदा होते थे मर जाते थे जैसे पैदा होते मर जाते थे। इस प्रकार ऐसा हो रहा है तो तुरंत जाके राजा कंप्लेंट किया ऐसा ऐसा हो रहा है कि आप कुछ पाप कर रहे हो इसलिए मेरे बच्चे इस प्रकार अकाल मृत्यु आ रहा है। तो अर्जुन ने प्रण लिया मैं आपके बच्चों का संरक्षण करूंगा आप चिंता मत करो। तो वो अभी ब्राह्मण का और एक बच्चा होने वाला था उनकी पत्नी अभी गर्भवती थी उनको बच्चे पैदा करने के लिए समय आया जन्म लेने का समय आया। तो अर्जुन जो है अपना गांडीव लेके धनुष लेके बाहर खड़े है कि कौन आके देखे जाता है बच्चा को मैं देखता हूं। जैसे जन्म लिया पहले के बच्चे कम से कम 3-4 घंटे जीवित थे लेकिन ये तो तुरंत मर गया। और तो पूरा ब्रह्मांड घूम इधर उधर घूम के आया कहीं उनका बच्चा नहीं मिला यमलोक तक जाके आया उधर भी नहीं मिला। तभी अर्जुन ने ऐसा प्रण लिया था कि अगर बच्चों को मैं देखभाल नहीं करूंगा संरक्षण मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। तो अर्जुन जो है अभी अग्नि प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। तो यही भक्त जो है दुविधा में होता है तो कृष्ण प्रकट होते कृष्ण आए तो अर्जुन बोला क्या हो गया तुमको। तो अर्जुन बोलता है कि मैंने प्रण लिया तो ठीक नहीं प्राय। तो कृष्ण बोला ठीक है जाओ। तब कृष्ण बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ चलो हम ढूंढ के आते हैं। तो दोनों ढूंढने के लिए इधर गए उधर गए। तो कृष्ण जो है वो अर्जुन को लेके गए ब्रह्मांड को पार करते हैं विराजा नदी के ऊपर विष्णु के पास गए। विष्णु के पास जब गए तो अनंत शेषनाग के ऊपर लेटे हुए है और अर्जुन की सूर्य देखा। अर्जुन ने देखा कि विष्णु के जो अनंतनाग शैया के ऊपर 17 बच्चे बैठे हैं। तो अर्जुन विमोहित हो गए और कृष्ण भी थे। तो अर्जुन ने पूछा है भगवान आप ये बच्चों के लिए क्या कर रहे हो आप। तो विष्णु ने कहा अस्तित्व में मैं कृष्ण को दर्शन करना चाहता था और मुझे मालूम है कि कृष्ण वैसे तो मेरे पास आएंगे नहीं उनका प्राण लिया है उन्होंने क्या है मैं भक्तों को किसी भी हालत में मैं उनको बचाऊंगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा भक्त थोड़ा सा तुमको परेशान किया ताकि तुमको ऐसी परिस्थिति में डाला तुमको बचाने के लिए जो कृष्ण को कुछ भी करना पड़ेगा तो उनको मेरे पास आना पड़ा। तो नारायण स्वयं विष्णु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जो रूप है रूप माधुरी है उनका आस्वादन उनको उनको सुनना उनको देखना चाहते हैं उनको आस्वादन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के बीच संवाद चला और वेंकट भट्ट तो हार गए संवाद में बोले कि उन्हें मैं स्वीकार करता हूं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चिंता मत करो अस्तित्व में कृष्ण और नारायण एक ही है लेकिन फिर भी कृष्ण का जो माधुरी है वो माधुरी जो है वो श्रेष्ठ है ईश्वरी से। तो लेकिन तुम अभी दास्य रस में हो और आपका संप्रदाय रामायण संप्रदाय जो है वो दास्य भक्ति का प्रचार हो रहा है ठीक है आप अपना दास भक्ति करते रहो करके उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को शांतना दिलाया। तो ये भक्तों को हमारे लिए बहुत व्यवहारिक तरीके से ये कैसे हम ये कर सकते हैं हाउ टू एक्सेप्ट दिस थिंग हाउ क्या ये जो प्रकार के अनर्थ है या इस प्रकार के अलग गलत ज्ञान है कर्म की वजह से आ सकती ज्ञान कांड की वजह से आ सकती या माधुर्य ज्ञान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान के प्रति आ सकती ये कैसे हम इससे बच के रह सकते हैं ये बात को ध्यान में रखना चाहिए सारे भक्तों को कि सारे जो वैदिक नियम कानून जैसे भगवान बताते भगवद गीता में एक जगह बताते हैं क्या बोलते एक चैप्टर का आखिरी श्लोक जो एक चैप्टर लास्ट श्लोक जो कितना भी आप वेदों को अभ्यास करने के द्वारा में प्राप्त नहीं होता हूं और वेदेश यज्ञेश तपस्त चैवा ज्ञाने दानेश यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम पुण्य फलम प्रतिष्ठम योगी परम स्थान उपेति चाध्यम। तो ये पुण्य फलम प्रतिष्ठम यज्ञ दान तपस्या इनके द्वारा जो प्राप्त फल है वो आपको भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है, यानी ये सबको करने की जरूरत नहीं, ये बात कहते हैं। लेकिन अंत में भगवान क्या करते हैं कि यज्ञ दान तपस्या को कभी किसी को त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबके द्वारा क्या होता है, पावनानि मनीषी, बड़े मनीषी लोग भी पवित्र होते हैं। तो हम ये जो भी वैदिक कार्य वगैरह करते हैं, तपस्या है, यज्ञ है, दान है, कर्म है, ये सब करते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान का अभ्यास है, भगवान के ऐश्वर्य रूप का गुणगान है, ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शुद्धिकरण के लिए करते हैं। तो ये सबको भक्तों को त्याग नहीं करना चाहिए, ये सबको स्वीकार किस रूप में करना चाहिए, ये मेरे शुद्धिकरण के लिए करके स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मन ही मन में, हृदय हृदय में हमारा जो लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की जो शुद्ध प्रेम भक्ति है, वैकुंठ से परे वृंदावन धाम में माधुर भक्तों के साथ में भगवान की सेवा का सेवा को ही प्राप्त करने का लक्ष्य बना के रखना चाहिए। जैसे इसके लिए बृहद भागवतामृत बहुत सहायक होता है भक्तों के लिए, जिसके अंदर गोप कुमार वो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, ब्रह्मांड में पृथ्वी से स्वर्ग गए, स्वर्ग गए महर्लोक का, तपन लोक का, जल लोक का, हर जगह जहां जहां जा रहे थे वो उस जगह का सुंदरता का वर्णन है। लेकिन गोप कुमार इस सुंदरता का, जितने भी बाहर लोग स्वर्ग का, इवन ब्रह्म लोक का भी सुंदरता को देख के वो आकृष्ट नहीं हुए। इतना हद तक जब गोप कुमार गए उधर वैकुंठ में नारायण को देखे, नारायण को देख के तुरंत बोलेंगे हो मेरा कृष्ण, चलो मैं आलिंगन करने के लिए जाता हूं। तो उधर के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बाहर लोग सोचने लगे कौन है गोप कुमार, हमारा जो प्रभु है उनको आलिंगन करना चाहता है, ये जो भाव है उधर वैकुंठ में फिट नहीं हो रहा था। तो गोप कुमार ने सोचा कि नहीं नहीं ये भी फिट जगह नहीं मेरे लिए, तो मुझे जाना है गोलोक वृंदावन। तो एक गोप कुमार के उदाहरण को स्वीकार करते हुए हमको क्या करना है कि ये जितने भी यज्ञ दान तपस्या वैदिक विधियों का पालन और भगवान की ऐश्वर्य गुणों का वर्णन, ऐश्वर्य लीला का स्मरण, ये सब चीजें भक्तों को करना है। लेकिन किस भाव से करना है कि ये सब मेरे शुद्धिकरण के लिए, इट इज फॉर माई प्यूरिफिकेशन। लेकिन इसमें ही रत रहना, इसी में रह जाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य क्या है, गोलोक वृंदावन जाना है। इसलिए हमेशा कृष्ण की मधुरता को प्राप्त करने की आकांक्षा होना चाहिए और बाकी सबको भी स्वीकार करना चाहिए, किसके लिए, हमारे हृदय की शुद्धिकरण के लिए। कुछ ऐसे सहजी है वो कहते हैं, इन सबको निंदा ही करते हो, बोलते हैं कि आपको यज्ञ करने की आवश्यकता है, दान करने तपस्या करने कोई साधना कोई किसी चरने की जरूरत नहीं है, भगवान का ऐश्वर्य नामों का भी उच्चारण नहीं करना है आपको, बस कृष्ण का माधुरी का भी करना है आपको, कुछ और चीजों को स्वीकार नहीं करना बताते हैं। लेकिन वो सहजियों के बराबर नहीं होना चाहिए, हमको दोनों को देखना चाहिए। एक है हमारे हृदय में जो लालसा, हमेशा कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम में माधुरी का प्राप्त करने की लालसा होना चाहिए, और साथ साथ बाकी सब चीजों को हमारे एक साधक के रूप में, शुद्धिकरण के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। ये कृष्ण का इस प्रकार की ब्रह्म मोहन लीला का स्मरण करेंगे, उनकी सहायता के द्वारा हमारा जो कृष्ण प्रेम की वास्तविक जो सिद्धि है, कृष्ण प्रेम, उसको शीघ्र ही हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ सत्य घटना है, सत्य घटना है, इट इज अ ट्रू स्टोरी। वो गोप कुमार करके एक था कि ट्रू स्टोरी है बृहद भागवतामृत, ये भागवतम का आगे वाला भाग है बृहद भागवतामृत। उत्तरा ने पूछा कि परीक्षित से क्या है, भागवत सुने तो इसका बाद क्या है, तब परीक्षित महाराज ने अपनी माँ उत्तरा को सुनाया, ऐसा क्लियर आइडिया नहीं, मैं पढ़ा नहीं, लेकिन और यू क्लासेस सुना था मैं, उसके अंदर पता, ये सत्य घटना है, विष्णु गोप कुमार करके भक्त है। तो सी साख्या कैन बी साख्या मीन्स फ्रेंडशिप, माधुर्य मीन्स कॉन्जुगल। सो वेन एवर वी से माधुर्य, माधुर्य मीन्स स्वीटनेस। वेन यू टेक द मीनिंग ऑफ स्वीटनेस, टेक द मीनिंग ऑफ माधुर्य स्वीटनेस, देन देर आर टू काइंड ऑफ साख्य, देर टू काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इन ऐश्वर्य, फ्रेंडशिप इन स्वीटनेस। अर्जुन had the relation with Krishna as a friendship in Aishwarya. So what is that? When he saw the Aishwarya form of the Lord, immediately thought, oh, I did a mistake. I called you, hey Saka, hey friend, what happened? My dear, what happened to you? We sat in the same bed, we ate it together. I did a wrong thing. I was not knowing that you are God. So that is called Aishwarya Jnana Yukta Sakya. So, the sweetness, the friendship in sweetness, that is there in Golok Vrindavan, like the Sakas, उनके जो कृष्ण के जो मित्र है, ग्वाल बाल है, वो सब भले वो कृष्ण को अभी अगासुर को वध किए, बताए कृष्ण बैठो खाओ मेरा चीज, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो लेकिन मेरा मित्र है। तो ऐसा वर्णन आता है भागवतम है कि जब एक ग्वाल बाल कृष्ण के शरीर के ऊपर कूदते थे और उनको नीचे गिराते थे, ऐसा उनका शरीर का अंग स्पर्श करता था, कृष्ण को ऐसा लग रहा था कि अपना ही शरीर का अंग उनको स्पर्श कर रहा है। जैसे अगर मेरा हाथ मैं अपने बांझ अगर छाती के ऊपर ऐसा सवार हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्योंकि मेरा ही हाथ है, अगर कोई और आके ऐसे ऐसे कर रहा है तो अजीब सा लगता है। तो कृष्ण के शरीर के ऊपर जब ग्वाल बाल कूदते थे, उनके शरीर को संवारते थे, कृष्ण को ऐसा लग रहा था उन्हीं का हाथ उनको संवार रहा है, यानी कृष्ण इन ग्वाल बालों को अपना ही अंग के रूप में देखते थे। ये है फ्रेंडशिप साख्य, माधुरी के मधुर मधुर साख्य। लेकिन ये मधुरता का शब्द अगर माधुर्य लेंगे, इफ यू टेक the meaning of the word madhurya as conjugal, so that conjugal is with gopis and the queens of Vrindavan. Theek hai,
but with gopas and balbal also madhurya,
it is not madhurya, it is sakya with sweetness, aishwarya jnana rahita sakya. It is not madhurya rasa. Madhurya rasa is conjugal. Okay? Parikara means, parikara matlab apne jitne bhi sati hai, all the devotees, all his associates. Parikara means associates. Rest of the Gopakumar pastime. Yeah, I cannot elaborate it because I have not read Brihad Bhagavatam, it is still to be read. But I just know the overview that how he went from one place to another. Wherever he was going, people were saying, oh, come Gopakumar, come here. Then he was not interested. One place. All the planets are described, all the planet systems. And he was only completely satisfied when he went to Golok Vrindavan. Even when he went to Vaikuntha, he was not satisfied. Because there, that affection, that sweetness was not there.
So, Galbals and Gopis are in different levels.
Yeah, they are in different levels. They are in different levels at the same place, on the same plane. They are all in the plane of sweetness, relation of sweetness of Krishna. But in the same plane, the difference is, the Gwal Bals, they were in the Sakya Rasa, and the Gopis, they are in the Madhurya.
Does it ever happen that someone from Goloka, like, is it mentioned in Bhagavatam or any other scripture that Gopi or Gwal Bals or any other, because our acharyas all are in the Yeah. Have they come for
has he come to this material world for preaching? Yeah. They're all there. Rupa Goswami, Rupa Manjari, Rati Manjari, Sanatana Goswami, Anami Manjari. They're all mentioned. आपको एक घटना मालूम है कि प्रभुपाद लीलामृत में आता है, प्रभुपाद जी को पिताजी थे, वो कपड़े का दुकान चलाते थे, तो कपड़े की दुकान में तो चूहा तो घूमता ही है, तो वो चूहे को रोज दुकान बंद करने से पहले बहुत सारा जो खाने का चीज है वो डाल के जाते थे तो चूहा खा ले। तो व्यक्ति बोलता है कि अरे आप तो चूहों को भी देखभाल करते हो। तो उन्होंने कहा हाँ चूहों को भी देखभाल करता हूँ, अगर मैं उसको आहार दे दूंगा तो मेरे कपड़े बच जाएंगे। तो ये तो एक गृहस्थ धर्म होता है कि जितने भी जीव है वो जीव को देखभाल करना उनका धर्म होता है। इसलिए हम अभी भी गांव में जो है जो बनता है जो रोटी वगैरह बनता है, दो तीन रोटी जाके कुत्ते को डालते हैं और जो भी बिल्ली उनको देते हैं, धर्म होता है। तो ये संतों की बात हो रही है इधर। संत लोग देखते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, ये ईर्ष्या है, ईर्ष्या को वध हो रहा है, ऐसा देखते हैं। ऐसा नहीं कि जानवर का मृत्यु हो रहा है, ऐसा भी कहीं शास्त्र में सुना है वर्णन, ने पता नहीं कितना तक सही है, जस्ट कहीं बहुत साल पहले ऐसे सुना था, इसके ऊपर मैंने रिसर्च भी नहीं किया, कि सांप अपनी योनि से मुक्त तभी हो सकता है जब उसको मारा जाए, कोई मारता है तभी उसका मुक्ति होता है सांप को, वो योनि से दूसरा योनि में जाना है तो। इसलिए गांव में ये तो वैदिक सभ्यता भी है, कहीं भी कोई जहरीला सांप दिखाई पड़ता है तुरंत मारते हैं, बाकी जानवर को नहीं मारते, भले वो कितना जहरीला कितना कठिन क्यों, मारते नहीं है, जहरीला सांप को मारते। लेकिन कुछ धामों में सांप को नहीं मारते, धाम में कुछ ऐसे जैसे सुब्रमण्य क्षेत्र जो वो सांप उधर निवास करने के स्थान, वो कुछ हानि भी नहीं करते लोगों को, बहुत सारे सांप घूमते रहते हैं, क्योंकि वो सुब्रमण्य जो कार्तिकेय के वो भक्त है वो सब, तो कुछ ऐसे सांप है जिनको मारा नहीं जाता है वो, और हानि भी नहीं पहुंचाता है। कुछ ऐसे जो सांप है जिसको इसके ऊपर मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो सुना गया तो बस बोल रहा हूं। ठीक है, श्रीमद्भागवतम की श्रीलप्रभुपाद की जय।